प्रातः क्लास चल रहा था, 10/11/1966 दसवें पेज के मध्य में बात चल रही थी। यह है बेहद का दिन और बेहद की रात। वो 12 घंटे का हद का दिन और 12 घंटे का हद का रात नहीं है, बेहद ब्रह्मा का दिन। आधा कल और बेहद ब्रह्मा की रात, आधा कल। इसके लिए बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। कौन सा बाप कहते हैं? वेद के दो बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्यों का बाप। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज। तो कौन कहते हैं कि मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ? है शिव बाप कहते हैं कि मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। युगे युगे नहीं आता हूँ। हर 12-1250 वर्ष का जो युग होता है, चाहे सतयुग, त्रेता, चाहे द्वापर, चाहे कलयुग, कोई भी दो युगों के बीच में नहीं आता हूँ। जब चारों युग संपूर्ण बनते हैं, चारों युगों की आयु बीत जाती है, तब कल्प के संगम युगे आता हूँ। जब अंधियारा पूरा होता है, अज्ञान की रात पूरी होती है, बेहद अज्ञान की रात, और बेहद का दिन होता है सतयुग। दोनों के संगम में आता हूँ। ऐसे नहीं कि सतयुग पूरा हुआ, और त्रेता युग आया, तो दोनों के युगों के बीच में मैं कोई 14 कला संपूर्ण राम बन के आता हूँ। नहीं, न त्रेता युग पूरा होता है और द्वापर शुरू होता है। इन दो युगों के बीच में भी नहीं आता हूँ। क्योंकि द्वापर है द्वैतवादी युग, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो मतें, दो दो कुल, तो जहां द्वैतवाद शुरू होता है तो शुरुआत में तो सात्विक होगा ना, तब भी नहीं आता हूं। और जब द्वापर का अंत होता है, चौथी अवस्था से द्वापर पास होता है, तब भी कोई कृष्ण भगवान बनकर नहीं आता हूं। कि द्वापर के अंत में आकर के कलयुग पापी युग की स्थापना करूंगा, भगवान के लिए तो दूसरे धर्म वाले भी कहते हैं हेवनली गॉडफादर। हेवन अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला फादर, जो और धर्म पिताएं हैं इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट, ये कोई स्वर्ग स्थापन नहीं करते हैं, न स्वयं स्थिति में रहते हैं, ये तो देवान में रहते हैं। तो देवान से तो पांच विकार पैदा होते हैं, तो विकारी युग की वृद्धि करेंगे वो देहधारी धर्म पिताएं, या निर्विकारी देवताओं की दुनिया बनाएंगे। तो मैं चौथा युग तमो प्रधान कलाहीनता का युग जब पूरा होता है, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल जाती है, कोई को पता नहीं रहता कि मैं कौन, मेरा बेहद का बाप कौन, जो बाप बेहद सुख शांति का वर्षा देने वाला है। ऐसा ज्ञान अंधकार जब सारी दुनिया में कलयुग के अंत में फैल जाता है, तब मैं आता हूं। और मेरी कोई वो जन्म पत्री भी नहीं है तिथि तारीख की, जो कोई जन्म पत्री निकाल सके, तिथि तारीख है फलानी तारीख में आया, वो भी नहीं। क्योंकि मैं कब आता हूं, कब जाता हूं, कोई को पता ही नहीं पड़ता। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं पड़ता है, जिसके द्वारा वेद वाणी ज्ञान की वाणी सुनाता हूं। इनमें कब प्रवेश किया? इनको भी नहीं मालूम पड़ता। किनको है? ब्रह्मा को भी नहीं मालूम पड़ता, या ब्रह्मा नामधारी जो भी है, क्योंकि जिसमें भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो इन ब्रह्मा नामधारियों को कोई को पता नहीं पड़ता कि मैं कब आता हूँ। चाहे ज्ञान सुनने सुनाने के लिए आता हूँ, चाहे बुद्धि से समझने समझाने के लिए आता हूँ, और चाहे प्रैक्टिकल कर्म में ज्ञान की अनुभूति कराने आता हूँ। संस्कारों का परिवर्तन कराने आता हूँ। तो इनमें से कोई को पता नहीं पड़ता, न सुनने सुनाने वाले ब्रह्मा को पता चलता कि कब आता हूं, और न समझने समझाने वाले बुद्धिमान नर को पता चलता है। जो कहते हैं गीता में, बुद्धिमान नर अर्जुन, ज्ञान का अर्जन करने वाला, ज्ञान के आधार पर सद्भाग्य का अर्जन करने वाला, उस अब्बलम्बर अर्जुन में भी कब आता हूँ उसको भी पता ही नहीं पड़ता। और न विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाला संस्कारों को पलटने वाला प्रैक्टिकल जीवन में, प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों में पवित्रता की 100% भाषणा देने वाले विष्णु में भी नहीं आता हूं। विष्णु माना ही नो विषय काल, कोई विषय विकार का नाम मात्र नहीं, अंश मात्र भी नहीं। तो बताया, ये ब्रह्मा भी नहीं जानते कि मैं कब आता हूं। समझा ना बच्ची? तो इन बातों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। क्या कि भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, भूत प्रेतों की आत्मा प्रवेश करती है तो सबको पता चल जाता है। पता चलता है कि नहीं है? वो भूत प्रेत जब जाते हैं तो भी सबको पता चल जाता है। कोई कोई ने देखा होगा, भूत प्रेत भी दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और ईविल कर्म करने वाले भी होते हैं, दुखदाई। जैसे ये गुलजार बच्ची है, इसमें जब प्रवेशता होती है तो पता चल जाता है ना कि सोल ने कब प्रवेश किया, पता चलता है ना। कब प्रवेश किया, कब चला गया, पता चल जाता है। तो ये तो सब मनुष्य आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माओं के आत्मा में पूर्व जन्म के पापों का बोझ होता है। तो जिसमें प्रवेश करती है उसमें भी बाहरीपन आ जाता है। जिसमें प्रवेश करते हैं उनको पता ही नहीं रहता, या तो गुम हो जाते हैं। तो उनका दिव्य जन्म नहीं कहेंगे, चाहे वो कोई भी देव आत्माएं रही हूं या राक्षसी आत्माएं रही हूं, मैं प्रवेश करता हूं तो मेरी आत्मा में पाप कर्मों का बोझ होता है क्या? होता है। मैं तो जन्म मरण के चक्र से ही नहीं आ रहा हूं, तो पाप पुण्य करने का हिसाब ही नहीं। तो मैं तो हल्की फुल्की आत्मा हूं, जिसमें प्रवेश करता हूं या जिनमें भी प्रवेश करता हूं उनको पता ही नहीं चलता कब आया और कब चला गया। तो बताया, इन बातों को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि भगवान का दिव्य जन्म कैसा होता है, और वो दिव्य जन्म क्यों कहा जाता है। बच्चों को ये ज्ञान की बातें धारण करना चाहिए। भूल नहीं जाना चाहिए है? क्यों कहा भूल नहीं जाना चाहिए? 66 की वाणी है, बाबा तो त्रिकालदर्शी है ना, कौन है? शिव बाप त्रिकालदर्शी है, तो वो जानता है कि आगे चल करके ये दादा लेखराज ब्रह्मा शरीर छोड़ेगा तो ये सूक्ष्म शरीरधारी बन जाएगा और बच्चे भूल जाएंगे क्या बात भूल जाएंगे? है? है? अरे क्या बात भूल जाएंगे? कि शिव बाप की प्रवेशता में और मनुष्य आत्माओं की प्रवेशता में क्या अंतर होता है? है? अरे तो बच्चे ये बात भूल गए या नहीं भूल गए? 18 जनवरी सन 69 को दादा लेखराज ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया और 3 दिन के बाद वो आत्मा गुलजार दादी में प्रवेश कर गई। तो कोई बच्चों को ध्यान ही नहीं रहा कि ये शिव की आत्मा है या दादा लेखराज ब्रह्मा की मनुष्य आत्मा है। तो क्या समझ लिया? है? क्या समझ लिया? हाँ, कि शिव बाबा ने प्रवेश कर लिया। फिर बात बनाई ली, एक और बात भूल गए। बात ये बनाई कि ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी हो गया, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में शिव भगवान ने प्रवेश किया और ब्रह्मा वाली आत्मा और शिव की आत्मा दोनों मिलकर के गुलजार दादी में प्रवेश कर लिया। तो ये बात भी भूल गए कि ब्रह्मा मुख से जो वेदवाणी चलाई उसमें बाप ने बोला था क्या? कि मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में प्रवेश ही नहीं करता हूं। तो सूक्ष्म वतनवासी होगा वो तो सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन में रहेगा कि दुनियावी बातों के मनन चिंतन मंथन में रहेगा? है? सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन में रहेगा तो उससे तो कोई पाप ही नहीं बनता। जब कोई साकार शरीर में प्रवेश करे वो मनुष्य आत्मा तो पाप पुण्य बनवाती है। तो ये बात भी भूल गए कि शिव बाप कभी भी सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ताओं में प्रवेश नहीं करता है। तो ये बातें भूल नहीं जाना चाहिए। जैसे गैया होती है तो भोजन खाती है, भोजन खाने के बाद फिर क्या करती है? उगारी करती है। मुख में अंदर ही अंदर चबाती रहती है ना, वैसे ही तुम बच्चों को भी इन ज्ञान की बातों की स्मृति करनी चाहिए। जो सुप्रीम सोल बाप सुनाते हैं अंदर ही अंदर स्मरण करना चाहिए। गाय की तरह जुगाली करनी चाहिए। भूल नहीं जाना चाहिए। यहाँ तो तुम लोगों को बहुत फुर्सत है। कहाँ है यहाँ माने कहाँ मधुबन, मधुबन जहाँ मुरलिया बाजे, मधुबन में मुरलिया बाजे रे। तो यहाँ तो दुनिया का कोई धाम काम धंधा नहीं है, तुमको कोई पेट का धंधा नहीं। यहाँ तुमको स्थूल पेट के धंधे की कोई चिंता है, है? नहीं, कौन से पेट की चिंता होनी चाहिए? हैं? बुद्धि रूपी पेट भरा रहे। यहाँ तो बैठ करके तुम विचार सागर मंथन कर सकते हो। बाहर की दुनिया में जाएंगे तो बाहर की दुनिया का वाइब्रेशन तुम्हें तंग करेगा। तुम वो विचार सागर मंथन करने योग्य जो पॉइंट हैं वो भूल जाएंगे। तो वहां दुनिया में तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन जब यहाँ मधुबन में आते हो, जो गायन है मधुबन में मुरलिया बाजे, तो यहाँ तुम अच्छी तरह से सारा दिन विचार सागर मंथन कर सकते, बाबा ने क्या क्या बोला, क्यों बोला। जो बोला उसमें गुह्यता क्या है, तो देखो वहां तुम सेंटर्स में रहते हो यही बाबा की वाणी सुनते हो, सुनते हो ना, वहां से सुना और ये भागे अपने धंधे दौरे में। तो यहां में और वहां में क्या अंतर हुआ, कुछ अंतर हुआ क्या, अंतर हुआ? अरे वो ही मुरली वहां सुनते हो टेप रिकॉर्डर में टीवी में, और वो ही मुरली तुम यहां सुनते हो। तो यहां तुमको फुर्सत है विचार सागर मंथन करने की, वहां तो तुम एक घंटे डेढ़ घंटे दो घंटे के लिए आते हो और बाहर की दुनिया में जाकर के सब भूल जाते हो। भागने की जल्दी पड़ी रहती है। तो ये ज्ञान की बातें ही वहां उड़ जाती, कहां, गीता पाठशाला में या मधुबन नहीं कहेंगे। मधुबन तब कहेंगे जहां मुरलिया बाजे। और जो मुरलिया बाजे उसमें भी अंतर है, फर्स्ट क्लास मुरलिया, सेकंड क्लास मुरलिया और थर्ड क्लास मुरलिया। तो यहां कौन सी मुरलिया तुमको मिलती है, क्यों? यहां मधुबन में जहां मुरलिया बाजे, क्योंकि मुरली की तान पर गोप गोपियां डांस करने लग पड़ती है। कौन सा डांस? ज्ञान का डांस करने लग पड़ती है। तो यहां तुम विचार सागर मंथन कर सकते हो। यहां बैठ करके आओ, यहां आकर के बैठो, बस इनको ही देखने से तुमको षष्ठि का चक्कर याद आ जाएगा। किनको है? किनको देखने से है? अरे बाबा जब इनको कहते तो किस तरफ इशारा करते? ब्रह्मा बाबा को देखेंगे, ब्रह्मा बाबा के लिए कहेंगे इसको। ब्रह्मा बाबा एक है या दो चार है? उस समय तो जब प्रवेश किया तो एक ही है ना, तो उसके लिए बोलेंगे इसको। और यहाँ बोला इनको देखने से ही तुमको सारा षष्ठी चक्र याद आ जाता है। किनको है? हाँ, जो बाबा ने लक्ष्मी नारायण का चित्र साक्षात्कार से बनवाया, वो चित्र देखने से तुमको सारा षष्ठी चक्र याद आ जाएगा। साक्षात्कार से बनाए हुए लक्ष्मी नारायण के चित्र में और दूसरे भी जो लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, जिनके फीचर्स इनसे मिलते जुलते नहीं है, जहां जहां भी लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, उन सब के फीचर्स इन लक्ष्मी नारायण से मिलते जुलते हैं, है? नहीं है? तो उनको देखने से तुमको पूरा षष्ठी चक्र नहीं याद आएगा। किनको देखने से याद आएगा? हैं? इनको। क्यों? इनमें क्या खास बात है? वो भी लक्ष्मी नारायण और ये भी लक्ष्मी नारायण है। ये है संगम युगी लक्ष्मी नारायण, जो संगम युग में ही लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं पुरुषार्थ करके। एक ही जन्म में पुरुषार्थ करते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं और एक ही जन्म में लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। तो संगम से लेकर के कलयुग के अंत तक का सारा षष्ठी चक्र तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है इनको देखने से। बाकी सतयुग में और भी तो लक्ष्मी नारायण होते हैं नंबर बार, उनके फीचर्स अलग अलग होंगे या एक ही तरह के होंगे? हैं? अलग अलग तरह के होंगे। तो टैली करना ध्यान से, बनाने वालों ने ब्राह्मणों की दुनिया में लक्ष्मी नारायण के फीचर्स चेहरे एक जैसे ही बनाए हैं या अलग अलग बनाए दिए? हैं? अलग अलग प्रकार से बनाए दिए। तो वो जो अलग अलग प्रकार से बनाए हुए चेहरे हैं, वो पूरे 84 जन्म नहीं लेते। और ये लक्ष्मी नारायण जिनका चित्र साक्षात्कार से बाबा ने बनवाया, वो कितने जन्म लेते हैं? पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों में एक दिन भी नहीं कम, एक घंटा एक सेकंड भी कम नहीं। और जो चित्र हैं लक्ष्मी नारायण के, उनके जन्म कम हो जावेंगे या पूरे 84 जन्म लेंगे? कम हो जावेंगे। क्यों है? क्योंकि उन्होंने पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी। मनन चिंतन मंथन जो करना चाहिए वो मनन चिंतन मंथन नहीं किया। और इन लक्ष्मी नारायण ने जो जो कुछ बाबा ने बोला उन सब बातों का अच्छी तरह से मनन चिंतन मंथन किया है, इसलिए इनके 84 जन्म पूरे होते हैं। यहाँ तक कि जब ठेठ सतयुग शुरू होता है, राधा कृष्ण सतयुग के जो पहले हैं उनका जन्म होता है, तो उन राधा कृष्ण ने संगम युग में बाप से प्राप्ति की, शिव बाप से लक्ष्मी नारायण का पद लिया है? नहीं लिया। उनको लक्ष्मी नारायण का पद किससे मिलता है? अपने साकार माता पिता अर्थात इन्हीं लक्ष्मी नारायण से मिलता है, जिन्होंने संगम युग में शिव बाप का दिया हुआ वर्षा संपूर्ण प्राप्त किया। कैसा संपूर्ण वर्षा? अति इंद्रिय सुख का वर्षा। क्या? इंद्रियों से परे का सुख प्राप्त किया, क्योंकि शिव बाप निराकारी बाप आत्माओं का, उनको इंद्रियां हैं, उनको अपनी इंद्रियां होती है, होती ही नहीं। तो वो इंद्रियों का वर्षा देंगे, इंद्रियों के सुख का वर्षा देते हैं, हैं? कि अतीन्द्रिय सुख का वर्षा देते हैं, अतीन्द्रिय सुख का वर्षा देते हैं। और राधा कृष्ण इनके बच्चे जो नीचे खड़े हुए हैं, इनको ध्यान से देखो, ये राधा कृष्ण एक दूसरे को बड़े प्यार से दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये इंद्रियों का सुख ले रहे हैं या अतीन्द्रिय सुख भोग रहे हैं? ये इंद्रियों का सुख भोग रहे हैं, अर्थात इन्होंने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं किया। इन्होंने जन्म तो लिया, अतीन्द्रिय सुख लेने वाले लक्ष्मी नारायण से, जो पुरुषार्थी जीवन में ही नर से नारायण बन जाते, नारी से लक्ष्मी बन जाते, उनसे जन्म तो लिया लेकिन उतनी ऊंची कोटि का सुख ये नहीं प्राप्त कर पाते। क्यों? हाँ, क्योंकि इन्होंने पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ पाई। बहुत टाइम गवा दिया। जो सच्चाई की जानकारी लेनी चाहिए, ज्ञान की जो गहराई पकड़नी चाहिए, वो इन्होंने नहीं पाई। बच्चा बुद्धि होने के कारण बहुत लंबे समय तक टाइम गंवा दिया। ज्ञान की गहराई को न पकड़ने के कारण बाप कौन है इस मनुष्य सृष्टि का, उसको पहचाना है? नहीं पहचाना। मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो बाप साकार है, इंद्रियों वाला है या सिर्फ निराकार है? तो साकार से साकारी वर्षा मिलेगा और निराकार से निराकारी ज्ञान का वर्षा मिलता है। तो साकार इंद्रियों की दरकार है नहीं? तो इन लक्ष्मी नारायण को देखते ही तुम्हारी बुद्धि में आ जाएगा यथा राजा तथा प्रजा। अरे ये तो हम ही है क्या? ये अतीन्द्रिय सुख लेने वाले हम ही हैं। मन सतयुग में जो आठ नारायण होंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, वो अतीन्द्रिय सुख का वर्षा नहीं लेंगे। और हम इनके राज्य में यथा राजा तथा प्रजा, राजा ने जो सुख लिया वही सुख प्रजा भी लेगी या नहीं लेगी, या इंद्रियों का सुख लेगी? हैं? अति इंद्रिय सुख भोगेंगे। जो गायन है अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोप गोपियों से पूछो, जिन्होंने ज्ञान की गहराई को समझकर इतना गहरा गुप्त संबंध जोड़ा है बाप के साथ। तो तुम्हारी बुद्धि में आ जाएगा। कि इन्होंने 84 जन्म लिए और इनके राज्य में हम भी आएंगे तो हम भी कितने जन्म लेंगे? हम भी पूरे 84 जन्म लेंगे। ऐसे नहीं, दादा लेखराज ब्रह्मा उर्फ सतयुगी कृष्ण की तरह हमारे शरीर के द्वारा पार्ट बजाने का 50 वर्ष का टाइम खत्म हो जाएगा। उनहत्तर में शरीर छोड़ा और 69 से लेकर 50 वर्ष ऐड करो तो कितने वर्ष हुए है? अरे अठारह हो गए। जो बोला है तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लेते हो, तो शिव बाप ने बोला किसके लिए बोला? تم بچے کس کو بولتے ہیں؟ ہے سنمکھ بیٹھنے والوں کو بولتے ہیں تم بچے. دادا لکھراج برہما کی آتما اور ستیو کی کرشن کی آتما سنمکھ بیٹھتی ہے؟ سنمکھ تو نہیں بیٹھتی. کب تک سنمکھ نہیں بیٹھتی؟ کب سے؟ ارے جب سے سنگم یوگ شروع ہوا تب سے لے کر باپ کو انہوں نے پہچانا. ہے کتنے سال ہو گئے اب تک؟ ہے 80 سال ہو گئے. ابھی انت میں جا کر کے انہوں نے سویکار کیا. کیا؟ کہ راجدھانی ماؤنٹ آبو میں نہیں استھاپن ہو رہی ہے, راجدھانی دلی میں استھاپن ہو رہی ہے. کیونکہ ماؤنٹ آبو میں تو گلزار بچی میں کون آتا ہے بار بار؟ ہے دادا لکھراج برہما کی سول آتی ہے. تو وہ سوریونسی راجدھانی استھاپن کرے گی, وہ گیان چندرما ہے یا گیان سوریہ؟ تو چندرونسی راجدھانی استھاپن کرے گا یا سوریونسی راجدھانی استھاپن کرے گا؟ تو ابھی سنگم یوگ میں پہلے پہلے کون سی راجدھانی استھاپن ہونی ہے؟ چندرونسی نہیں ہے. ارے گیان چندرما کی آتما ابھی سنگم میں پریکٹیکل میں پارٹ نہیں بجایا. بجایا یا نہیں بنایا؟ بجایا. بجایا تو چندرونشیوں میں مکھیا آتما کون ہوئی؟ گیان چندرما برہما. تو وہ اپنی راجدھانی استھاپن نہیں کرتا؟ کرتا کہ نہیں کرتا؟ ہے کرتا ہے. راجدھانی استھاپن کرتا ہے تبھی تو شاستروں میں وکھیات ہے. کیا کہ رادھا کون سے ونش کی؟ چندر ونش کی, اور کرشن سوریا ونش کا. تو سوریہ ونش تو اونچا ہوتا ہے, اونچ کل کا ہو گیا, اور چندر ونش اس کے مقابلے نیچ کل کا. تو سوریہ ونشی کرشن تو چندر ونشی رادھا کے چندر ونش میں آئے گا نہیں؟ آئے گا نہیں آئے گا. وہ تو سمجھتا ہے ہم تو اونچ کل کے ہیں, ہم کیوں وہاں ناک لٹکانے جائیں. تو آخرین چندرونشی رادھا کو سوریونشی کرشن کے پاس آنا پڑے. تو جب رادھا کرشن کے ساتھ انگیج ہو جاتی ہے تو رادھا کا ونش کون سا بن جاتا ہے؟ سوریہ. रंग से बन जाता है, संग का रंग लग जाता है। ज्ञान सूर्य का संग का रंग राधा को क्यों लग जाता है? दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा को क्यों नहीं लगता है? पुराना कौन है? है? अरे दादा लेखराज ब्रह्मा तो ज्यादा पुराना है ज्ञान में, या राधा पुरानी है? 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 राधा पुरानी है?
नहीं, लेखराज ब्रह्मा।
दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा पुरानी है और राधा तो बच्ची है ना ब्रह्मा की। कौन से कुल में पलती है? चंद्रवंश में पलती है। तो बड़ा कौन हुआ?
सूर्यवंश।
नहीं, ओम राधे और दादा लेखराज ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा दोनों आत्माओं के बीच में बड़ा कौन हुआ?
अरे
बात पूर्व जन्म की ली जाती है या वर्तमान जन्म की ली जाती है? वंश है, पूर्व जन्म का देखा जाता है क्या? अरे वर्तमान जन्म का वंश देखा जाता है या पूर्व जन्म का देखा जाता है? तो वर्तमान में राधा बाद में ज्ञान में आई या ब्रह्मा पहले ज्ञान में आया या राधा पहले ज्ञान में आई? राधा पहले ज्ञान में आई। है? कौन पहले ज्ञान में आया?
बाद में आएगी, सिद्धि पूर्ण करेगी।
तो कोई कारण होगा ना? अरे कोई कारण होगा या नहीं होगा? हैं? क्या कारण? क्यों राधा ज्ञान में क्यों तीखी? ओहो, दादा लेखराज ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा जो विश्व पिता जगत पिता बनता है उसमें चंद्रमा की सोल प्रवेश नहीं करती है? वो संग के रंग में नहीं आती? आती है कि नहीं?
लेकिन वो सूक्ष्म शरीर से आती है।
ओहो, कोई भी शरीर से आती है, आत्मा संग के रंग में आती है या नहीं आती है?
आती है,
आती है। और राधा वाली आत्मा तो इतने लंबे समय तक संग के रंग में नहीं आती है। तो भी राधा वाली आत्मा भले अंत में संग के रंग में आती है तो भी लास्ट सो फास्ट चली जाती है। ये क्या चक्कर हो गया है? क्या कारण हुआ है? कन्याओं में ज्यादा प्योरिटी होती है या बाप में ज्यादा प्योरिटी होती है? है? कन्याओं में। और शिव बाप ने तो पहले ही बोल दिया ब्रह्म वाक्य में, वेदवाणी में, पुरुष सब दुर्योधन दुशासन। क्या बोल दिया? पुरुष है सब दुर्योधन दुशासन, वो चाहे ब्रह्मा हो चाहे शंकर हो। वो अपना बाहुबल जरूर दिखाते एकांत पाई के, कुछ न कुछ, कोई परसेंटेज में कम कोई परसेंटेज में ज्यादा दिखाएंगे। तो ज्यादा शुद्ध बुद्धि किसकी हुई? चंद्रवंशी कन्या की बुद्धि शुद्ध हुई या अधूरे ज्ञान चंद्रमा की बुद्धि शुद्ध हुई। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा अधूरा या संपूर्ण? अधूरा माने ज्ञान उसमें नहीं होता पूरा, क्योंकि क्यों पूरा नहीं होता?
बाप को पहचाना नहीं,
इसलिए नहीं पहचान पाता कि ब्रह्मा की गोद में इस्लाम धर्म के आधार मूर्त नारायण बनने वाली आत्मा चाहे क्रिश्चियन धर्म का आधार मूर्त नारायण बनने वाली आत्मा चाहे बौद्ध धर्म की आधार मूर्त सतयुग में नारायण बनने वाली आत्मा या कोई भी सतयुग के नारायण बनने वाली आत्माएं द्वापर युग कलयुग में दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों कन्वर्ट हो जाती है? क्योंकि पूर्व के 63 जन्मों में उन कम कला वाले सतयुग के नारायणों ने पूरा ज्ञान नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं पढ़ा? अरे कोई कारण होगा ना। कारण है पूर्व जन्म के 63 जन्मों से कनेक्टेड। 63 जन्मों में वो नारायण जिन जिन धर्म पिताओं के आधार बनते हैं तो उनके धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। नहीं समझ में आया? क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं? क्योंकि ब्रह्मा की गोद में बैठ करके जब उन्होंने ज्ञान लिया तो ब्रह्मा की गोद अर्थात कोख अर्थात देह को ज्यादा महत्व दिया। उनको नशा रहने लगा। क्या? अरे हमने ब्रह्मा बाबा की गोद ली है, तुम तो कल के बच्चे हो, तुम क्या हमें ज्ञान सुनाओगे? तो ये देह का नशा रहता है। इस देह के नशे के कारण वो शिव ने आत्माओं के बाप ने त्रिकालदर्शी बाप ने जो ज्ञान सुनाया ब्रह्मा के मुख से, उस मुख से सुने आए हुए ज्ञान के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो कुखवंशावली ब्राह्मण बने लेकिन मुखवंशावली ब्राह्मण ज्ञान सूर्य शिव की औलाद नहीं बने। क्या नहीं बने? अम्मा को पहचाना, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने लेकिन बाप को नहीं पहचाना। भले दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से ही भेदवाणी बोली 66 में की लगभग या उसके आसपास बोली कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नहीं लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखना चाहिए। और तुम बच्चों को भी अपने नाम के टाइटल के लिए क्या लिखना चाहिए? ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं लिखना चाहिए कि हम अम्मा के कुमार हैं, हम अम्मा के बच्चे हैं। क्या लिखना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी है। तो वो जो कम कलाओं वाली नारायण बनने वाली आत्माएं हैं, जिनको ब्रह्मा की गोद का ज्यादा नशा रहता है, उनके फॉलोअर्स को भी वो ही नशा रहता है, तो वो अपन को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कुमार लिखते हैं, बी के लिखते हैं या पीबी के लिखते हैं? बी के लिखते। बाप को पहचाने ही, जिस बाप से वर्षा मिलता है, काहे का वर्षा है? ज्ञान का वर्षा मिलता है। ये तो जाना कि ज्योति बिंदु बाप, ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप, आत्मा है निराकार, निराकार आत्माओं का निराकार ज्योति बिंदु, बेहद का बाप ज्ञान सुनाते हैं। ये तो बुद्धि में बैठा, लेकिन ये नहीं बुद्धि में बैठा कि निराकार बाप से निराकारी ज्ञान का वर्षा मिलता है। क्या निराकारी बाप से स्वर्ग का साकार वर्षा नहीं मिलता? स्वर्ग साकार है या निराकार?
साकार।
तो स्वर्ग का रचयिता साकार होगा या निराकार होगा? ये बात नहीं जान पाई, इसलिए वो अपने ही अहंकार में रहते हैं कि ब्रह्मा बाबा बल चले गए, शरीर छोड़ दिया, लेकिन बाबा ने हमको ये जिम्मेवारी दी। क्या? जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे राम राज्य आएगा, क्या आएगा? राम राज्य आएगा। मैं राम राज्य में फर्स्ट प्रिंस बनूंगा, तो हुआ क्या बाद में? राम राज्य आया नहीं आया? तो उनकी गोद का नशा लेने वालों को वो बात बुद्धि में बैठ ही नहीं पाती। क्या क्या बात? कि स्वर्ग का वर्षा स्वस्थिति में रहने की पक्की प्रैक्टिस करेगा। जो साकार मनुष्यात्मा ऐसी निरंतर याद की स्थिति में टिकेगा, वो ही शिव समान 100% स्टेज को प्राप्त करने वाला स्वस्थिति में सदा रहने वाला स्वर्ग की स्थापना करेगा प्रैक्टिकल में। क्योंकि शिव बाप कहते हैं, मैं त्रिकालदर्शी तो हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूं। अर्थात प्रैक्टिकल में मास्टरी मेरी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे को शरीर ही नहीं है। प्रैक्टिकल है, स्वर्ग की स्थापना करने वाले तुम बच्चे हो। प्रैक्टिकल में त्रिकालदर्शी तुम बच्चे हो, मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं। क्या कहा? आत्माओं के लोक का वासी हूं, वहां का मालिक हूं, अंडे अंडे मिसल आत्माओं का, लेकिन स्वर्ग का मालिक मैं नहीं बनता। ये तो सब जानते हैं कि धनवान बाप होगा तो धन का मालिक होगा, धनवान बाप धन का वर्षा देगा, जमींदार बाप होगा तो जमीन का मालिक होगा, खुद मालिक होगा तो बच्चों को भी मालिक बनाएगा, वर्षा देगा। तो शिव बाप ने तो साफ बताई दिया क्या कि मैं ज्ञान की अथॉरिटी हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं, मास्टर त्रिकालदर्शी तुम बच्चे बनते हो नंबर वार। तो जो पूरा ज्ञान उठाते हैं वो ही पूरे जन्म लेते हैं। ब्रह्मा के मुख से जो मैंने ज्ञान सुनाया, जिसे शास्त्रों में वेदवाणी कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, ब्रह्म वाक्य जिन्हें कहा जाता है, वो ब्रह्म वाक्यों की पढ़ाई जो अच्छी तरह से सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, समझते हैं बुद्धि से और दूसरों को समझाते हैं, खुद बाप को पहचानते हैं, कौन से बाप को है, हाँ, जिस साकार बाप की पहचान मुरलियों में शिव बाप ने दी है, लेकिन वो पहचान कोई भी मनुष्य मात्र नहीं ले पाता। बाप को स्वयं अपनी पहचान होती है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसे, इसलिए बाप की पहचान बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। कोई कहे क्यों नहीं दे सकता, शिव बाप ज्योतिबिंदु ने तो मुरलियों में सारी पहचान दी कि सारी मनुष्य सृष्टि का पिता कौन, प्रजापिता बोला है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, प्रजापिता द्वारा राजधानी की स्थापना करते हैं, परिचय नहीं मिला, मिला। तो ऐसे ढेर वाक्य हैं जिनसे साबित होता है कि मुरलियों में तो बाप ने शिव बाप की पूरी पहचान दी है, लेकिन उस पहचान को दूसरी मनुष्य आत्मा पकड़ नहीं पाती। कौन सी आत्मा पकड़ती है, जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है वो ही पहले पहले पकड़ता है। और बाप की पहचान जिसे मिलती है पहले वो ही फिर दूसरों को समझाता है। खुद समझे, खुद जाने, खुद पहचाने, तो खुद के ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है। इसलिए बोला इसी पिछले सीजन की अभ्यतवाणी में बता दिया कि बाप दिल्ली में राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तुम सब बच्चों को चाहे माउंट आबू में बैठे हुए हैं, चाहे कोई भी सेंटर से में बैठे हुए हों, सब बच्चों को राजधानी में जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। तो राजधानी बनेगी सूर्यवंशियों की, किसकी? सूर्यवंशियों की राजधानी बनेगी। और कहाँ स्थापन होगी? दिल्ली में। कितनी बार बताया, जमुना के कंठे पर राजधानी स्थापन होती है नई दुनिया की। तो जो सहयोगी बनते हैं और ज्ञान सूर्य का टाइटल लेने वाले राम बाप को पहचानते हैं, वो सूर्यवंशी राजधानी में संगम युग में ही आ जावेंगे या अगले जन्म में आवेंगे? संगम युग में ही आ जाएंगे। तो तुम बच्चे समझते हो कि हमने 84 जन्म लिया है क्या? हम 84 जन्म लेकर के फिर यथा राजा तथा प्रजा, हम भी क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हैं, नर से नारायण जैसे, नारी से लक्ष्मी जैसे बनते हैं। तो यहाँ रहने से, कहाँ रहने से, और मधुबन में वहां रहने से, वहां अपने अपने सेंटर में जो तुम सुनते हो और यहाँ आकर के जो सुनते हो और सुन करके चले जाते हो, उन गोरख धंधों में चले जाते हो। कौन से धंधों में? गोरख धंधा क्यों रखा? गौरख धंधा कहा, बैल रख धंधा नहीं कहा? अरे बैल रख धंधा क्यों नहीं कहा? तुम कहेंगे गोपाल कन्हैया गाया हुआ है। तो जब भगवान ही गोपाल गाया हुआ है तो हम भी गऊओं की पालना करेंगे, रक्षा करेंगे कि बैलों की रक्षा करेंगे, गऊओं की रक्षा करेंगे? तो तुम अपने अपने गोरख धंधे में वहां सेंटरों में लग जाते हो, थोड़े समय के लिए आते हो, ज्ञान सुनते हो, फिर सारा दिन गोरख धंधे में चले जाते। तो वो गोरख धंधे की झंझट में तुम्हारा वो चला जाता है। क्या क्या वो चला जाता है? हैं? जो माला में ऊंचा नंबर आना चाहिए वो ऊंचा नंबर तुम्हारा चला जाता है। काहे में चला जाता है? तो गोरख धंधे में चला जाता है। कौन सा गोरख धंधा है? एक तो मुख्य गौ हुई परिवार में, परिवार को संभालने वाली माता हुई कि नहीं है? फिर बाल बच्चे, बाल बच्चों की पालना तो गौ करती है माता। तो पूरे परिवार की पालना में, पेट पूर्ति में तुम्हारा सारा दिन का टाइम चला जाता है। तो उस गोरख धंधे के झंझट में तुम्हारा वो चला जाता है। क्या चला जाता है? हैं? हाँ, अब्बल नंबर की माला में आना है, आठ की माला में, 108 की माला में आना है, 1000 भुजाओं में आना है, या 16000 गोप गोपियों की लिस्ट में आना है, जो जन्म जन्मांतर राज परिवार में जन्म लेकर के हुकुम चलाएंगे। राज परिवार के बंदे प्रजा वालों के ऊपर हुकुम चलाते हैं कि नहीं? हाँ, चलाते हैं। तो कौन सी माला में आवेंगे? वो माला भी चली जाती है। बाबा ने तो लक्ष्य दिया, ब्रह्मा मुख से मुरलियों में क्या लक्ष्य दिया था? क्या बनना है? नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। लेकिन वो अव्वल नंबर जो लक्ष्य दिया था वो तो 76 में ही डिक्लेयर हो गया। क्या डिक्लेयर हुआ कि नहीं? कौन बनेगा? वो लक्ष्मी नारायण के चित्र में ही लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखा है? आने वाले 10 वर्षों में हैं पुरानी दुनिया का, ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश, विघटन, वैसे के ब्राह्मणों की दुनिया का विघटन और नई ब्राह्मणों की दुनिया की स्थापना हो जाएगी। जिस ब्राह्मणों की दुनिया में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष भी मनाया गया। कौन सा वर्ष है? 76। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? आत्माओं के बाप का है? नहीं, मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? वो प्रत्यक्षता वर्ष बेसिक ब्राह्मणों ने भी बनाया और जो एडवांस ब्राह्मण है उन्होंने भी। उस 76 के वर्ष में बेसिक में रह करके ही बनाया, भले बाद में एडवांस में आ गए लेकिन मनाया तो वो जो अल्लाह अव्वल दिन अल्लाह माने ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करने वाला, अव्वल दीन माने अव्वल नंबर सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने वाला, लक्ष्मी नारायण का पार्ट तो 76 में ही प्रत्यक्ष हो गया। उसके बाद टू लेट का बोर्ड लग गया। क्या? कि कोई लक्ष्मी नारायण का पद प्राप्त करना चाहे तो अब टू लेट हो गया। उसके बाद 8 का रह गया, अष्टदेव, 8 की माला, युग जगत पिता के सर पर रखी हुई दिखाई जाती है भक्ति मार्ग में। देखा, शंकर के जटाओं में कितने मणकों की माला? 8 की माला। इतना प्यार करते हैं उन 8 को कि सर पर चढ़ा लिया। बहुत प्यारा बच्चा होता है ना, तो प्यार में आकर बाप क्या करते हैं? बच्चों को सर पर चढ़ा देते। कोई बहुत सेवा करता है तो बाप को प्यार आता है। जैसे गंगा ने बहुत ज्ञान की सेवा की तो बाप को प्यार आया। क्या किया? गंगा को सर पर चढ़ा लिया। तो आठ की माला हो इसी तरह, फिर 108 की माला हो, चाहे ब्रह्मा की भुजाओं वाली माला हो, सहयोगियों की माला, चाहे 16,000 की माला हो गोप गोपियों की, जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास जो भी मालाएं हैं, वो मालाओं में आने का तुम्हारा उमंग उत्साह चला जाता है। हाथ उठाओ, आठ में आने का उमंग उत्साह किसका किसका है, उठाओ। अरे अरे हाँ, वो कोने में बैठा हुआ कहता आठ में आने का उमंग उत्साह हमारा है, छुप के क्यों बैठे। क्या बताया आठ में आने वालों की निशानी, क्या बताई, जब से ज्ञान में आए होंगे तब से ही मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न, मेरा तन अर्पण होगा तो बाप के कार्य में लगेगा, तन में चाहे कान हो तो बाप का ज्ञान सुनेंगे, आंखें तो बाप को देखेंगे, मुख है तो बाप का ज्ञान सुनेंगे सुनाएंगे, हाथ है तो बाप की सेवा में लगेंगे, पांव है तो ईश्वरीय सेवा में दौड़ लगाएंगे, नहीं तो कहीं भी पांव से भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि घूमना फिरना भूतों का काम है। जब से ज्ञान में आए होंगे तब से वो अपनी जेब का कमाया हुआ कोई पैसा नहीं खर्च करेंगे देह के संबंधियों के पीछे, तन की कोई सेवा, कोई इंद्रियों की सेवा देह के संबंधियों के प्रति नहीं लगाएंगे। अरे देह के संबंधी तो छोड़ो, अपने पेट के लिए भी धंधा नहीं करेंगे, ईश्वरीय धंधा करेंगे, क्योंकि उन्हें पक्का निश्चय हो जाता है आरंभ से ही, क्या कि बाप ने कहा है मेरी सेवा में रहने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते, तो उन्हें पक्का निश्चय हो जाता है, हो जाता है कि जब भूख मरेंगे ही नहीं, चाहे अकाल पड़े चाहे दुकाल पड़े चाहे अतिवृष्टि हो चाहे अनावृष्टि हो चाहे भूकंप आए मकानात गिर जाएं, तो भी हमको पेट की चिंता नहीं, भले खिचड़ी मिले, क्या खिचड़ी मिले हम पीछे हटने वाले नहीं, क्योंकि बाप तो कहते हैं मैं अच्छा अच्छा नहीं दूंगा, न कपड़े दूंगा न खाने को दूंगा न मकान दूंगा, अच्छा अच्छा नहीं दूंगा, एकदम खराब भी नहीं दूंगा। जैसे नालों के किनारे बैगर्स पड़े रहते हैं झोपड़ियों में, ऐसे रहने का तो मैं मकान भी नहीं दूंगा, लेकिन साधारण साधारण जरूर दूंगा। तो इस बात पे उनको संतुष्टि हो जाती, क्या कि हम साधारण में ही प्रसन्न हैं, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो वो आठ की ये निशानी बताई। अब जो अभी भी धंधे दोरी में लगे हैं, पेट के धंधे में, उनको तो निश्चय नहीं है कि अगर हम ऐसे करेंगे, पेट के धंधे की बात बुद्धि से उड़ाए देंगे और ईश्वरीय धंधे में लग जाएंगे तो हमारे तो बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे। क्या बीवी बाल बच्चे भीख मांगते फिरेंगे? तो चिंता लगी हुई है। क्या जो घर में गऊ है, माता है, बच्चियां हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? हैं?
आपके ऊपर।
हाँ, हमारे ऊपर है, भगवान के ऊपर थोड़े ही है। और भगवान बाप कहते हैं कि मेरी सेवा में लगने वाले भूख नहीं मर सकते, और उनके बाल बच्चे भूख मर जाएंगे, नहीं मर सकते। तो गोरख धंधे में, उस झंझट में तुम्हारा जो माला में आने का उमंग उत्साह है वो ठंडा हो जाता है कि भाई अब अव्वल नंबर जो विश्व के मालिक है नरसे नारायण, वो तो पहले ही चला गया, टू लेट का बोर्ड लग गया, अभी आठ की माला में भी हम नहीं आ सकते, क्योंकि अभी भी हम झंझट में लगे हुए हैं। तो वो आठ का भी गया और 108 के लिए भी हिम्मत करें तो दिखाई दे रहा है जो बाबा ने बोल दिया कि तुम्हारी पूरी राजधानी कब तक तैयार हो जाएगी? है 28 तक तैयार हो जाएगी। जो रुद्रमाला और विजयमाला दोनों मिलकर के एक होंगे और राजधानी तुम्हारी तैयार हो जाएगी। तो विजयमाला में जाने की तो बात ही नहीं सोचते। क्या? क्योंकि प्रैक्टिकल में विकारों पर विजय तो हमने अभी तक पाई ली है, नहीं पाई। अरे हमारी तो बात छोड़ो, जो रुद्राक्ष के मण के कहे जाते हैं, संसार की बीज रूप आत्माएं कही जाती हैं, उन मणकों की तो बात छोड़ो, उन मणकों का जो बाप है वो ही अभी विषपाई का पार्ट बजाए रहा है कि कामदेव को भस्म कर दिया। बोलो, भस्म कर दिया है? कर दिया। अरे वो कामदेव अंदर का होता है, अपने अंदर, कोई बाहर से होता है वो अंदर की बात है। उसका पुरुषार्थ पूरा हो गया किसका है? जो रुद्रमाला के 108 मणके हैं उनका जो बाप है उसका पुरुषार्थ कामदेव को भस्म करने का पूरा हुआ। काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत। जब बाप ही नहीं हुआ तो हम कहां से हो जाएंगे? तो हिम्मत भी करते हैं फिर सोच के ठंडे हो जाते हैं, कभी हिम्मत करते हैं कभी ठंडे हो जाते हैं, कभी निश्चय बुद्धि और कभी अनिश्चय बुद्धि। तो तुम्हारा जो वो माला में आने का उमंग उत्साह है वो चला जाता है। किस बात में चला जाता है, है? गोरख धंधे के झंझट में वो सब डाउन कर देता है उमंग उत्साह। तो वो झंझट में जब तुम्हारा उमंग उत्साह ऊंचे नंबर की मालाओं में आने का चला जाता है, इसलिए कहा जाता है कि भाई ये 7 रोज यहाँ रहने का ठीक है। क्या क्या करो, कम से कम यहाँ बाप के घर में जहाँ मधुबन में मुरलिया बाजे वहां 7 रोज रह करके ऐसा पुरुषार्थ करो जैसा बाप का बच्चा जन्म लेने से पहले माँ के गर्भ में 9 महीने पुरुषार्थ करता है। कैसा पुरुषार्थ, अंदर ही खाना, अंदर ही पीना, अंदर ही श्वास लेना और अंदर रहकर ही अंतर्मुखी बनकर अथवा बहिर्मुखी बनकर के दुनिया को देखना। ऐसा होता है ना गर्भ में, बच्चा कभी अपने आप हंसता है, कभी अपने आप रोता है। उसको कोई हंसाता रुलाता है क्या, नहीं। तो कहाँ चला जाता है, कहाँ की स्मृति में चला जाता है, पूर्व जन्म की स्मृति में चला जाता है। तो जैसे लौकिक दुनिया में बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में पलता है, ऐसे ही तुम बच्चों को भी, वो तो स्थूल बच्चा है और तुम तो आत्मा रूपी सूक्ष्म बच्चे हो कि नहीं। अरे अपन को आत्मा ज्योति बिंदु समझते हो ना, तो तुम ज्योति बिंदु आत्मा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने से पहले बाप के घर में जाकर के जन्म लेते हो। क्या बाप के घर में, कौन से बाप के घर में, शिव बाप के घर परम धाम में या साकार बाप के घर में जाकर जन्म लेते हो? साकार बाप के घर में जन्म जाकर के लेते हो। जन्म लेने से पहले 9 दिन, 1 दिन आना 1 दिन जाना, दोनों दिन ज्ञान की लगन लगी रहती है और बाकी 7 दिन वहां रह करके अंदर ही खाना, अंदर ही पीना, अंदर ही देखना, अंदर ही अंदर बातें करना, अंदर ही अंदर श्वास लेना। क्या ये सब कुछ अंदर ही तुम्हारी पालना होती है 7 दिन? तो 7 रोज यहां रहने का ये ठीक है, यहां संगठन में कोई ऐसा है जिसने 7 रोज की ऐसी भट्टी न की हो तो सच्चाई से हाथ उठा दो। है? अच्छा किसने किसने की, हाथ उठाओ। अरे कोई नीचा हाथ उठा रहे, अच्छा ठीक है। तो बाबा ने बता दिया 7 रोज कम से कम यहाँ रहना ठीक है। कहाँ रहना है? जहाँ मधुबन में मुरलिया बजती है वहाँ रहना ठीक है, सात रोज कोई एक दफा की बात नहीं है। क्या क्या करो, सात रोज यहाँ आओ, अच्छी तरह से समझ करके जिनका मुख नहीं खुलता है वो यहाँ सात रोज आए और प्रैक्टिस करें। क्या सात रोज में जो समझाया जाता है वो दूसरों को सुनाने की प्रैक्टिस करें, मुख खोलें। जिनका मुख नहीं खुलता है उनका ये मुख ज्ञान सुनाने के लिए खुलवाओ। क्या माना, अपने अपने घर में रह करके वो उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि धंधा धोरी की झंझट बहुत बुद्धि में लगी रहती है। तो क्या बताया, कम से कम सात रोज आओ, पहले पहले मुख खुलाओ। किस बात के लिए है, कि खुद बाप को पहचाने और दूसरों को भी बाप की पहचान दें कि ये तुम्हारा बाप है जिससे तुम्हें जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। जो जीवन मुक्ति देने वाला बाप है वो खुद जीवन मुक्ति का अनुभव करेगा या नहीं करेगा, है? खुद अनुभव करेगा तो बच्चों को भी देगा, खुद अनुभव नहीं करेगा तो बच्चों को भी नहीं दे। तो पक्का मुंह खुलवाओ इस बात में, समझा समझा के कि ये तुम्हारा बाप है, बेहद मनुष्य सृष्टि का बाप, 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप जिससे तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलना है। बताओ ये बाबा है, क्या बताओ, ये बाबा है। बाबा माने ग्रैंडफादर, बाबा माने ग्रैंडफादर, और ये दादा है। क्या ये ग्रैंडफादर है, बाबा है, जो भी इस दुनिया में ग्रेट ग्रेट फादर्स हैं, ग्रेट फादर्स कौन कौन है पता है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, इनके परवर्ती भी, ये सब ग्रेट फादर्स माने जाते हैं अपने फॉलोअर्स के बीच में। तो ये फादर्स हैं और इन फादर्स को भी वर्षा किससे मिलता है, वो बाप कौन है, ये सब मनुष्य सृष्टि का बाप है या मनुष्य सृष्टि से बाहर है। मनुष्य सृष्टि का बाप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, जो सृष्टि के आदि में भी था, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का संपूर्ण विस्तार हो जाता है तो वो ही बीज विस्तारित हुए मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में जो पहला फल आता है उस फल के अंदर वो बीज उस झाड़ से पहले डिटैच हो जाता है, डिटैच हो जाता है यह हिलता रहता है, है? डिटैच हो जाता है। वो तुम्हारा बीज रूप बाप इस मनुष्य शक्ति में ये है, ये मुख खुलवाओ कि ये बाबा है। इस बाबा से, जिस ग्रैंडफादर से तुम्हें वर्षा जरूर मिलेगा। फादर का वर्षा मिले या न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा तुम्हें जरूर मिलेगा। और ये तुम्हारा दादा है। कौन? मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में पहला पत्ता कौन? उस बीज रूप बाप का पहला पत्ता कौन है? हाँ, 16 कला संपूर्ण कृष्ण वाली आत्मा। ये तुम्हारा बड़ा भाई है मनुष्य सृष्टि में। मनुष्य सृष्टि में बाप का बड़ा बच्चा कौन हुआ है? अरे पहला पहला धर्म पिता कौन हुआ साकारी मनुष्य सृष्टि में? देहधारी धर्म पिता है दादा लेखराज। ब्रह्मा की आत्मा ही सतयुग के आदमी नारायण बनेगी फर्स्ट नंबर का। वो तुम्हारा दादा है बड़ा भाई, जो इस मनुष्य सृष्टि में पहले पहले पद पाता है। इस मनुष्य सृष्टि में ये तुमको वर्षा मिलता है। ये विष्णुपुरी का वर्षा है। क्या? विष्णुपुरी में विष्णु को जो चार मददगार भुजाएं दिखाई गई हैं आत्मा रूपी, उन चार मददगार भुजाओं में सतयुग के पहले पत्ते और दूसरे पत्ते राधा कृष्ण का नंबर है या नहीं है? विष्णु की चार भुजाओं में है नहीं? अरे है। तो ये विष्णुपुरी का तुमको वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य है उस विष्णुपुरी में, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप ही विष्णु कहा जाता है। किसका किसका कंबाइंड रूप है? दो नारायण और दो लक्ष्मी, एक संगमयुगी नारायण, एक सतयुगी नारायण, एक संगमयुगी लक्ष्मी और एक सतयुग की लक्ष्मी। ये चार आत्माओं का स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन है विष्णु में। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई चार भुजाओं वाला व्यक्ति होता है मनुष्य सृष्टि के आदि में। ये अलंकारिक भाषा है कवियों की, विद्वानों की। तो ये बैठ करके समझाने के लिए एक दूसरे का मुख खुलवाओ। क्या क्या? इस मनुष्य सृष्टि में इस मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है, और मनुष्य सृष्टि में पहला पत्ता 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में कौन सा बड़ा भाई है? कौन कौन हुआ है? है? हाँ, वो है बाप और वो है बच्चा। तो ये विष्णुपुरी को कहेंगे लक्ष्मी नारायण का राज्य। कौन से लक्ष्मी नारायण का राज्य? अव्वल नंबर का या नंबर वार लक्ष्मी नारायण का? अव्वल नंबर लक्ष्मी नारायण का राज्य। जो माताएं क्या कहा, जो माताएं वाताएं, क्या जो माताएं वाताएं नहीं समझा सकती हैं, बाबा तंग हो गए। जो माताएं वाताएं नहीं समझा सकती हैं, नहीं बोल सकती हैं, उनका मुख खुलाओ, क्या दूसरों को समझाने के लिए उनका मुख खुलवाओ। फिर देखो क्या देखो कि भाभी इतनी प्रबल है, कितना भी माथा मारो किनके साथ? माताओं के साथ। माताओं के साथ क्या शब्द जोड़ा? बाताओं के साथ। बाताओं शब्द क्यों लगाया? और दुनिया की बातें करने में बड़ा दिल लगता है, लेकिन ज्ञान की बातें करने में उनका दिल नहीं लगता। बहुत बातें करेंगी लेकिन बाप की पहचान है नहीं दे पाते। तो उनका नाम रख दिया बाताओं। बातें करने में बड़ी दिल लगी रहती है आपस में, रज रज के बातें करेंगी, ज्ञान की कोई बात नहीं करेंगी। तो उनके साथ कितना भी माथा मारो, उनमें से किसी का मुख नहीं खुलता है, उनकी भाभी इतनी प्रबल है। भाभी माने भविष्य में वो क्या पद पाने वाली है, इतनी प्रबल भावी है कि बाबा क्या बोलते हैं, माताएं के साथ बाताएं सब मिल गए। जैसा नाम वैसा काम। तुम इतना माथा मारते हो उनका मुख ही नहीं खुलता, तो फिर उसको क्या कहेंगे? ड्रामा की भाभी। हम तो मेहनत की उनके साथ लेकिन उनका मुख नहीं खुलता है, तो उनकी भाभी, उनका भविष्य ही ऐसा है। पूर्व जन्मों के कुछ कर्म ही ऐसे हैं कि बुद्धि, इतनी प्रबल बुद्धि नहीं मिली। बाप कहते हैं कि मैं तो बहुत ही इनसे मेहनत करता हूं। क्या कहा बाप? क्या कहते हैं कि मैं तो बहुत ही इनसे मेहनत करता हूं। इनसे माने किन से? लक्ष्मी नारायण के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, है? माताओं में बड़ी माता कौन? ब्रह्मा बाबा। और उसी तरह की और भी माताएं जिनका ज्ञान सुनाने में, ज्ञान की गहराइयों में जाने में मुख खुलता है, बस बाबा 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 बाबा, शिव बाबा शिव बाबा शिव। बाकी कौन है शिव बाबा, क्या करता है, कब आता है, कब जन्म लेता है? शिवरात्रि जो महाशिवरात्रि के नाम से गाई जाती है वो किस समय की यादगार है, कुछ उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। तो बाप कहते हैं मैं तो बहुत इनसे मेहनत करता हूं। क्या कहा? मैं तो इन बच्चों की तकदीर के लिए तदबीर बहुत बताता हूँ। क्या 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 कहता तदबीर बताता हूँ है? तदबीर ये बताता हूँ कि तुम मुख से ज्ञान नहीं सुना सकती हो तो याद तो कर सकती हो है? तो याद ही करो, याद से वातावरण बनता है, वातावरण बनेगा तो सबकी बुद्धि एकाग्र होगी और फालतू की बातें बुद्धि में चलती रहेंगी, वही दुनियादारी की गर्मुई जगमुई बुद्धि में चलती रहेगी संगठन में बैठ करके, तो फिर वातावरण बिगड़ जाएगा ब्राह्मणों के संगठन का। कोई को नींद आएगी, कोई की बुद्धि इधर उधर भागेगी, तो बताया भले मैं तदबीर तो बताता हूँ। क्या तदबीर बताता हूँ? अच्छा तुम ज्ञान नहीं सुना सकती हो तो कम से कम बाबा की याद में तो बैठो ठीक से। ब्राह्मणों के संगठन में नींद में तो न बैठो, आलतू फालतू बातों का चिंतन तो न करो। अच्छा वाचा की सर्विस नहीं कर सकते तो कर्मणा की सेवा तो कर सकते हो। यज्ञ कुंड में है? अरे सेंटर्स में जो बाबा के घर हैं, मिनी मधुबन हैं, उनमें कर्मणा की सेवा तो कर सकते कि नहीं कर सकते? कर्मणा की सेवा करो। कन्याओं की देखरेख करो, वो भी तो सेवा है। बाबा ने माताओं की मुख्य सेवा क्या बताई है? कन्याओं की सुरक्षा करना। माताएं हैं ढाल और कन्याएं हैं तलवार। ज्ञान की तलवार हैं कन्याएं और तलवार की सुरक्षा करने का काम किसका? ढाल का। कोई दुश्मन आता है इन पर वार करता है या वार करने की कोशिश करता है तो चौकन्ने होकर के जिंदगी का अनुभव तो है ना। अरे माताओं को गंदी दृष्टि का और स्वच्छ दृष्टि का अनुभव है या नहीं है? है तो परखो और कन्याओं की सुरक्षा करो, तलवार की सुरक्षा करो। तो मैं तदबीर तो बहुत बताता हूँ। क्या प्यार से सेवा करेंगे चाहे कर्मणा ही सेवा करेंगे तो भी रिजल्ट क्या होगा? आगे चल करके तुम्हारा मुख खुलने लगेगा। लेकिन बाप कहते हैं कि तकदीर में नहीं होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? बाप तो बैठ करके यह मुरली चलाते हैं, अब ये तो नहीं ना कि सब एक समान पास होकर के पास विदानर हो सकते हैं। ऐसे क्लास में होता है क्या है? ऐसे तो नहीं हो सकते। तो ये बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है। क्या क्या यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है? कहाँ? तुम सूर्यवंशी बच्चों के संगठन में, जो सूर्यवंशी ब्राह्मण हैं, जिनको ये पक्का पक्का निश्चय बैठा है। बाप के घर में जाकर जब से जन्म लिया तो हम बाप के बच्चे हैं। कौन से बाप के हैं? जिसके लिए गीता में लिखा है भगवान वाच कि मैं जब आता हूँ तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूँ? है ज्ञान सूर्य को ज्ञान देता हूँ। बाप अपना टाइटल उस बच्चे को दे देते हैं कि सूर्य का बच्चा ज्ञान सूर्य। तो जो बच्चे बाप के घर में जन्म लेते हैं तो कौन से कुल के हुए? है सूर्यवंशी कुल के हुए। तो जो बच्ची करके आए हैं उनको अच्छी तरह से समझाओ कि उन्होंने अपना नाम बदल दिया है। क्या? बीके से पीबीके हो गए। और जो पीबी के हो गए प्रजापिता के बच्चे हो गए तो कौन सी राजधानी में आएंगे? सूर्यवंशी राजधानी में आएंगे। ऐसे जरूर निकलेंगे जो कम से कम सूर्यवंशी राजधानी में प्रजा तो जरूर बनेंगे। क्या? यथा राजा प्रजा तो जरूर बनेंगे। प्रजा से भी प्रजा बनेंगी क्योंकि फर्स्ट क्लास प्रजा भी होती है। क्या? बड़े बड़े साहूकार होते हैं राज्य में जो राजा को भी मदद कर देते हैं। जैसे राणा प्रताप हुआ, कोई साहूकार हुआ जिसने मदद कर दी, भामा शाह निकला, ऐन मौके पर इतना धन संपत्ति दिया कि राणा प्रताप ने फिर से लश्कर तैयार कर लिया। तो फर्स्ट क्लास प्रजा भी बनती है, सेकंड क्लास प्रजा भी बनती है, राजाओं में भी ऐसे ही होता है। कोई राजाओं में भी ऊंचे राजा, कोई कम राजा बनेगा, छोटा राजा बनेगा छोटे राज्य का। 10-11-66 के प्रातः क्लास का 11वां पेज। क्यों बनेगा छोटा बड़ा? है क्योंकि यहाँ राजयोग सीख करके राजाई बादशाही स्थापन हो रही है। जो जितना सीखेगा उतना बड़ा पद पाएगा। तो देखो कितना तुम बच्चों को बेहद में जाना पड़े। क्या? बेहद के बाप के बच्चे होना है? हद के बाप के बच्चे हो, हद के बाप में के घर में जन्म लिया या बेहद के बाप के घर में जन्म लिया? बेहद के बाप के घर में जन्म लिया। कैसे बेहद? कैसे बेहद का बाप का घर? बोला फरुखाबाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं। फरुखाबादियों से जाकर पूछो वो मालिक साकार है या निराकार, मानते तो तुम बहुत हो लेकिन तुम्हें पता है कि वो मालिक साकार है या निराकार, तो वो क्या कहेंगे हैं? निराकार बताएंगे। अरे विश्व का मालिक निराकार होगा विश्व पिता या साकार होगा? थोड़े बहुत बच्चों का बाप नहीं, जैसे क्राइस्ट को 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस अपना बाप मानते हैं, मानते हैं कि नहीं है? फिर भी हद का बाप है या सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है? फिर भी हद का बाप। तो तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि वेद का बाप कौन है? कहाँ का है? वेद के बाप का घर कहाँ है? जिस घर के बारे में ब्रह्म वाक्यों में वेद वाणी में ब्रह्मा मुख के द्वारा बारंबार बोला गया है, तो जब उनकी बुद्धि में ये बैठेगा कि विश्व का पिता कहाँ का है, है? फरुखाबाद का है, तो बेहद ज्ञान में उनकी बुद्धि चलेगी। जैसे नेहरू जी कहाँ के थे, हैं? इलाहाबाद के थे, तो बार बार कहाँ से जीत पाई? क्यों? क्योंकि इलाहाबाद के लोगों को इस बात का फखर था, क्या, कि भारत का प्रधानमंत्री कहाँ का? इलाहाबाद का है, तो बार बार उसी को चुनते थे, नशा कर जाता। तो यहाँ बैठ करके फिर जब बाप से सुनते हो यहाँ आए हो तो फिर उनको अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करो, किनको? किनको अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करो, हैं? बेहद के बाप को, जो आत्माओं का भी बाप है और मनुष्यों का भी बाप है। आत्माओं का बाप शिव बाप, और शिव बाप कहते हैं कि मैं जब आता हूँ तो तुम बच्चों को मैं आप समान निराकारी बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाता हूँ। तो किसको बनाता हूँ? इस बात पर विचार सागर मंथन करो। और यहाँ सुबह को भी आते हो तो भी बत्ती बत्ती बंद करने की दरकार नहीं है। ये जो चित्र लगे हुए हैं इन पर ड्रिल करो, ये मनुष्य शक्ति रूपी झाड़ खड़ा है, देखो ये मनुष्य शक्ति रूपी झाड़ है ना, बस उनको देखने से ही तुमको नशा चढ़ जाना चाहिए। ओहो, इस मनुष्य शक्ति रूपी झाड़ में हम पहले देखो कैसे देवता थे, ऊंचे ऊंचे देवता थे, मध्यम थे या नीचे श्रेणी के थे, चौरासी जन्म भोग करके अभी देखो हम लास्ट खाते में आ गए, क्योंकि चौरासी जन्मों में इंद्रियों से हमने देह के सबसे जास्ती सुख भोगे। कितने जन्म लिए? और धर्म वालों से जास्ती जन्म लिए या कम लिए? तो ज्यादा जन्म लिए हैं तो ज्यादा सुख भोगने वाले हम हुए या दूसरे धर्म वाले हुए? हमें तो बाप ने बता दिया है कि और धर्म वाले आधा सुख और आधा दुख भोगते हैं और तुम इस सृष्टि रूपी चक्र में पौना हिस्सा सुख और चौथाई हिस्सा दुख भोगते हो। भले हमने चौथाई हिस्सा दुख भोगा, कम दुख भोगा, लेकिन हमारा ये अंतिम जन्म है, हमने सबसे जास्ती जन्म लिए, जास्ती जन्मों में हमने जास्ती देह का इंद्रियों का सुख भोगा, तो जास्ती नीचे हम गिरेंगे या दूसरे धर्म वाले गिरेंगे? हम ही नीचे गिरते हैं, चट खाते में आ गए, लास्ट खाते में हम आ गए। क्यों? क्योंकि ये नियम है, एक बड़े आदमी का बच्चा हो, बड़े राज परिवार का, और एक गरीब आदमी का बच्चा हो, और दोनों कुसंग में आ जाएं, तो ज्यादा खतरनाक कौन बनेगा? बड़े आदमी का बच्चा ज्यादा खतरनाक, ज्यादा नीचे गिरेगा, ज्यादा पाप कर्म करेगा कुसंग में आकर। तो ये चौरासी जन्म भोग करके अभी देखो हम लास्ट खाते में आ गए, अभी हमारा ग्रैंडफादर बाबा जिसे साकार और निराकार का मेल कहा जाता है, वो बाबा हमको फिर से हाई जंप दिलाए रहे हैं, एकदम हाई जंप। क्या कैसा हाई जंप? एकदम नीच और अगले जन्म में एकदम इस दुनिया में एकदम हम ऊंचे बन जावेंगे। जंप करते हैं ना, ये सोलह कला बनने के लिए जंप कराते हैं। अभी हम नो कला, अभी क्या है, मुझे निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं, फिर नई दुनिया आएगी तो क्या होगा है? अरे बाबा ने मिसाल दिया भक्ति मार्ग में भी निर्गुण वालों को की संस्था होती थी ना, किसी यादगार है ये तुम बच्चों की यादगार संस्था होती थी भक्ति मार्ग में, जो कहते थे मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस पर हुई। बाप कहते हैं अरे तुम्हारे अंदर कोई गुण हो या ना हो, लेकिन मुझे जिस गुण की जरूरत है वो गुण तुम बच्चों में ही है, इस दुनिया में और कोई बच्चे नहीं है जिनमें ये गुण देखने में आता हो, न चंद्रवंशियों में 10-15% चंद्रवंशियों को छोड़कर, न इस्लाम वंशियों में, न बौद्ध वंशियों में, न क्रिश्चियन वंशियों में, कोई धर्म वंशियों में ये गुण नहीं है। क्या गुण? बाप की पहचान। तो मेरे लिए तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है, मैं इस गुण के ऊपर ही फिदा होता हूं। क्या तो इतना खुश होता हूं कि कलाहीन से आपे ही तरस परोई का मतलब क्या हुआ है? जैसे भक्ति मार्ग में निर्गुण बालकों की संस्था होती है कहते हैं आपे ही तरस परोई, वैसे ही यहाँ ज्ञान मार्ग में भी तुम बच्चों की संस्था है, संगठन है, जो अंदर से समझे बैठे हो क्या मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो बाप क्या करते हैं है? एक सेकंड में तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण बनने के लिए जंप कराए देते हैं। इतना समय तो नहीं लगता है ना, कहा ही जाता है एक सेकंड में जंप। क्या बाप को पहचाना और बाप के वर्षे का हकदार बना, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत जिसे कहा जाता है, उस बाप को एक बार पहचाना, निश्चय बुद्धि हुआ तो परसेंटेज में निश्चय बुद्धि कहा जाता है या 100% निश्चय बुद्धि कहा जाता है? कोई ऐसे कहता है दुनिया में कि 99% तो यही हमारा बाप है? हो सकता है 1% ये बाप ना हो, कोई ऐसा कहता है क्या है? तो तुम बच्चों का वो सेकंड जब तुम्हें पक्का निश्चय हो जाता है क्या कि मेरा बाप आ गया, मैंने अपने बाप को पहचान लिया और सदा सर्वदा के लिए पहचान लिया, ऐसे निश्चय बुद्धि की जीवन जीने वाले, ऐसा निश्चय बुद्धि का जन्म लेने वाले जब तुम बच्चे बनते हो कि हम अमरनाथ के बच्चे हैं, अमरनाथ के बच्चे हम ही अमर बनेंगे, अमर माने देवता, तो निश्चय बुद्धि विजयते। लेकिन होता क्या है, बार बार हार क्यों हो जाती है? अनिश्चय बुद्धि विनक्षते क्यों हो जाता है? बार बार हिम्मत करते हो, बार बार अनिश्चय बुद्धि की मौत में क्यों आ जाते हो? बताया, एक से ज्ञान सुनना चाहिए, एक की बातों को बुद्धि में धारण करना चाहिए, एक का ज्ञान दूसरों को सुनाना चाहिए। अगर अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाता है, तो अपने अंदर देखना है कि औरों की सुनी सुनाई बातों पर तो हमें विश्वास नहीं हो जाता, बाप के प्रति अनिश्चय बुद्धि तो नहीं होते, जब ऐसा पक्का निश्चय बुद्धि बनेंगे तो निश्चय बुद्धि राजधानी हासिल कर लेंगे, विश्व पर विजय प्राप्त कर लेंगे। एक सेकंड में जंप मारेंगे। तो तुम बच्चों को लालच होती है ना, एक सेकंड में जंप मारने की, किसके लिए गायन है? है? है?
शंकर के लिए, बेल पे सवार हो गए, हाई जंप।
शंकर के लिए नहीं गायन है, किसके लिए गायन है? है? जनक के लिए गायन है, एक सेकंड में जीवन, जन माने जन्म देने वाला, का माने करने वाला। क्या? एक सेकंड में अपना भी जन्म लेता है और उसी सेकंड में, उसी सेकंड से नंबरवार बच्चों का जन्म होता जाता है, जिन बच्चों को पक्का निश्चय बैठता जाता है कि हम एक से ही सुनेंगे, दूसरे से नहीं सुनेंगे, दूसरे की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे। सुनते हुए नहीं सुनेंगे, भले कोई सुनाता रहे कितना भी, और देखते हुए भी किसी को नहीं देखेंगे। कोई पढ़ा तो होगा नहीं ये, क्या कि जनक को एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, नई दुनिया का जन्म देने वाले को जनक, तुम सब क्या हो? सीताएं हो। क्या हो? सीताएं। अब्बल नंबर सीता भी कोई होगी या नहीं होगी? है? तो जो अब्बल नंबर सीता है उसके बाप का नाम जनक। ये कथाएं शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं, लेकिन समझते कुछ भी नहीं। क्या? क्या नहीं समझते? सीता कहाँ से जन्म लेती है? धरनी से जन्म लेती है और धरनी में ही समा जाती है। तो हम सब सीताएं हैं। शिव बाप ने वेदवाणी में क्या बोला, तुम सब सीताएं हो तो कहां से जन्म लेती हो, है धरणी से ही जन्म लेती हो। धरणी कौन है? जगदम्बा धरणी है, जिसमें पांचों तत्वों का संघात समाया हुआ है। पृथ्वी में कण कण में जल भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है, तो वो प्रकृति है। प्रमाने प्रकष्ट, कृति माने रचना, क्या है? भगवान की प्रकष्ट रचना है, जिसका नाम प्रकृति पड़ता है। क्या अगर भगवान का पार्ट राम का है तो राम क्या हुआ है? राम बाप को कहा जाता है या बच्चे को? बाप को कहा जाता है, वो मनुष्य सृष्टि का बाप है। और बाप पहले पहले किसकी रचना रचता है, है? बच्चों की नहीं, माता की रचना रचता है। तो माता हो गई प्रकष्ट रचना, वो है जगत पिता, तो माता हो गई जगदम्बा, जगत माता, जिसका नाम देते हैं सीता। सीता माने है शीतल बुद्धि वाली। तो ये शास्त्रों में कथाएं लिखते हैं, समझते कुछ भी नहीं है कि कैसे तुम सब सीताएं हो, है? नंबर बात, नहीं तो एक अष्टावक्र गीता है। कौन सी गीता? अष्टावक्र, वक्र माने टेढ़ा, अष्टा माने आठ जगह से, छ आठ जगह से टेढ़ा। क्यों आठ जगह से टेढ़ा क्यों कहा? है हाँ, पटरानियां कितनी गाई हुई हैं भगवान को? आठ पटरानियां। नाम पटरानियां क्यों रखा? पुरुषार्थ करते करते अंत में पट में जाती करती, तो दूसरे धर्म की है या सूर्यवंशी हैं? हैं? दूसरे धर्म की है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली है। तो बताया कि जो दूसरे धर्म की हैं वो क्या करेंगी, है? पति की परवरिश अच्छे से करेंगी या कुछ गड़बड़ कर देंगी, है? गड़बड़ जरूर करेंगी, क्योंकि द्वापर युग से जो और धर्म आते हैं उन धर्मों में कन्वर्ट होती रहती है। नंबर वार, तो जन्म जन्मांतर के उनके संस्कार और धर्मों के पड़े हुए हैं, संग के रंग के सूर्यवंश के हैं पक्के संस्कार हैं, और धर्म के पक्के संस्कार हैं। तो वो धोखा दे जाती है, क्या क्या करती है? धोखा दे जाती है। क्यों है? और धर्मों में क्या होता है? और सूर्यवंशी में क्या होता है? हैं? हाँ, एक लिंग भगवान की मान्यता है या अनेकों लिंगों की मान्यता है? है? जैसे भारत की परंपरा है कि भारत की कन्याओं माताओं को माता पिता जिस खूंटे से जीवन में बांध देते हैं, सारा जीवन उसी खूंटे से बंध कर रहती है। और विदेशी कन्याएं माताएं हैं, एक से बंध कर रहती हैं, नहीं डाइवोर्स की प्रथा उनमें चलती है। और भारत में पति शरीर भी छोड़ दे तो जीवन भर किसको याद करती है? हैं? उसी पति को याद करती है। तो दूसरे धर्मों में जो कन्वर्ट होने वाली हैं, वो पूरा ज्ञान उतना नहीं उठा पाती, इसलिए अंतिम जो परीक्षा है फाइनल पेपर, उसमें क्या कर देती है? दौड़ लगाते लगाते पट्ट में गिर पड़ती, गिर पड़ती। तो धोखा दिया, शिव शक्ति बन के रही अंत तक, या भक्त बन गई, भक्ति हो गई। तो बताया ये हड्डी हड्डी तोड़ देती है अष्टावक्र की, क्या कोई तो गर्दन ही मरोड़ देती है, कोई कंधे मरोड़ देती है, है? कोई कौन ही मरोड़ देती है, कोई कलाइयां मरोड़ देती है, कोई कमर तोड़ देती है, कोई घुटने तोड़ देती है, कोई टखने मरोड़ देती है। तो गाया हुआ है अष्टावक्र गीता। कैसी गीता? अष्टावक्र गीता। आठ जगह से टेढ़ा हो गया, क्यों टेढ़ा हो गया है? अरे आठ पटरानियां गाई हुई हैं और महारानी कौन गाई हुई है? है? राधा महारानी गाई हुई है। सारा जीवन पुरुषार्थी जीवन एक के बनकर रहती है, चाहे कितनी भी परीक्षाएं आए फिर भी एक की बनकर रहती है। भले पुरुषार्थी जीवन में सेवा करने के लिए अफ्रीका के हबसी लोगों के बीच में छोड़ दी जाए तो भी सेवा के क्षेत्र में विजयी बनती है या हार खाती है? विजयी बनती है। और विजयमाला की हेड बनती है, जिसके लिए हम बच्चों को खास बाप दादा ने आदेश दिया, किसका आवाहन करो, विजयमाला का आवाहन करो। तो अष्टावक्र की भी एक गीता है भक्ति मार्ग में, उसमें भी यह वर्णन है उनका कि बरोबर ये बच्चे गए उनके, ये तो बच्चे बच्चे होना, ऐसे बच्चे होना, तुमको देखो कोई समझ सकते हैं। ये हमको क्या ज्ञान देंगे, ये ज्ञान देंगी ये, और ये जीवन मुक्त ये बनाएंगी। देखो है तुम्हारे में, कोई का बैठता है यह कि ये भगवान और रचयिता और ये भगवान रचयिता और रचना के आदि को ये जानते हैं कि रचयिता कौन है और अव्वल नंबर रचना कौन है। तुम्हारे में कोई को बुद्धि में बैठता है कि मनुष्य सृष्टि का रचयिता कौन है और क्या और रचना इनकी कौन है, ये समझाएंगे क्या ये जीवन मुक्ति दें, उनको प्रश्न होता है पैदा दुनिया वालों को, क्या ये भारत को स्वर्ग बनाएंगे है? जिनका हेड अष्टावक्र गीता, क्या आठ जगह से टेढ़ा हो गया, उनको प्रश्न पैदा होता है क्या ये भारत को स्वर्ग बनाएंगे, ये गीता में लिखी है कि जनक का क्या ये लूला लंगड़ा, ये कुब्जा, इसको आठ आठ कुब देना, उसको वो अष्टावक्र गीता जिसको तो नाम ही रखा हुआ है अष्टावक्र गीता। अभी कोई बात ऐसी नहीं है, कैसी कि आठ जगह से हड्डियां तोड़ दी हो है? जैसे बाबा कहते हैं विकार में गिरे तो पांच मार से नीचे गिरेंगे, हड्ड गुड्ड टूट जाएगा, तो क्या टूट जाता है, हड्ड गुड्ड टूट जाता है, हैं? इस स्थूल में हड्ड गुड्ड टूटता है क्या है? नहीं, पुरुषार्थ की बात है, ऐसा नहीं है। अभी कोई बात ऐसी नहीं है, ये बैठ करके बहुत प्रकार के शास्त्र बनाए, कुछ न कुछ बैठ करके बनाए हैं। पीछे जब तमो प्रधान बने शास्त्र बनाने वाले, पहले पहले सतो प्रधान थे द्वापर के आदि में कि तमो प्रधान थे, पहले पहले सतो प्रधान थे, पीछे जब शास्त्र बनाए तो अगड़म बगड़म उनमें लिख दिया है। आदि के जो शास्त्र हैं उनमें सच्चाई, या जो बाद में शास्त्र बने उनमें सच्चाई है? आदि के जो शास्त्र बनाने वालों ने बनाए थे तब सात्विक बुद्धि थी, इतने विकारी नहीं थे, और अब विकारी बुद्धि बन गए, तो अगड़म बगड़म उन शास्त्रों में लिख दिया, बरोबर अगड़म बगड़म। सो भी बड़ी दंत कथाएं लिखी है, मनुष्य की बुद्धि नहीं है यहाँ कि इस दुनिया में शंकर पार्वती कहाँ से आए, या शंकर पार्वती इस दुनिया में कहाँ से आएंगे। यहाँ कोई कोई बात है, यहाँ ऐसी कोई कोई बात है ना, यहाँ बात है कोई। शंकर और पार्वती कोई अमरनाथ पहाड़ पर गुफा में आएंगे? आएंगे नहीं, तो शास्त्रों में क्यों लिख दिया गुफा माने? अरे गुफा जो बाहर से देखने में काली काली दिखाई पड़ती है, उसमें सब कोई घुसने का साहस करता है, वो अमरनाथ की गुफा में ऐसे समझते हैं कि शंकर पार्वती आएंगे। ये भी समझ में नहीं आता है इन दुनिया वालों को कि अमरनाथ, अमर माने देवताएं, नाथ माने देवात्माओं को कंट्रोल करने वाला, देवात्माओं को नाथ डालने वाला। तो शंकर और पार्वती तो सूक्ष्म बतन में रहते हैं किस आधार पर? सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज में ऊंचे रहते हैं या नीचे रहते हैं? हैं? ऊंची स्टेज में रहते हैं। यहाँ पहाड़ पर कहाँ से आएंगे अमरनाथ में, जो कैलाश पर्वत पर दिखाते हैं? तो देखो है ना पत्थर बुद्धि, ऊंची स्टेज शास्त्रों में क्यों दिखाई कैलाश पर्वत है? क्योंकि पुरुषार्थ में, ज्ञान में, योग में, धारणा में और सेवा में ऊंची स्टेज में गए, इसलिए दिखाते हैं कि पहाड़ पर गए। अमरनाथ की गुफा में दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं अमरनाथ की गुफा में, क्या दिखाते हैं? हैं? अरे बर्फ का लिंग दिखाते हैं ना, क्या दिखाते हैं अमरनाथ की गुफा में? बर्फ का लिंग। अरे लिंग भी कोई ठंडा होता है क्या? लिंग में गर्मी आती है तो ठंडा रहता है या गर्म होता है? है? गर्म होता है। परंतु उन्होंने अमरनाथ की गुफा में बर्फ का लिंग दिखाया हुआ है। क्या मतलब? हाँ, शिव बाप ने बोला वेदवाणी में क्या कि योग बल से तुम बच्चों की इंद्रियां शीतल होती जावेंगी। मार मारने वाली नहीं रहेंगी, दुखदाई नहीं रहेंगी। कौन सी इंद्रिय है जो दुखदाई दिए दुखदाई बने बगैर रहती नहीं? सबसे जास्ती उद्वेग पैदा करती है, और उद्वेग दूसरे को भी कराती है। ये भोगियों की बात है या योगियों की बात है? भोगियों की बात है। शिव बाप तो आकर के हमें सहज राजयोग सिखाते हैं, जिस सहज राजयोग से हमारी इंद्रियां शीतल हो जाती हैं। अब जितना जो पुरुषार्थ करे, तो देखो दुनिया वाले तो पत्थर बुद्धि है, वो नहीं समझेंगे तुम्हारे पुरुषार्थ को। अभी तुम्हारी पारस बुद्धि है, तुम तो कहते हो वाह, अभी हम जाएंगे वहां अमरनोक में, हम जाएंगे अमरनाथ में। लक्ष्मी, ये पार्वती और सीता का, पार्वती और शंकर का स्थान है। शंकर तो किसको कथा थोड़े ही सुनाते होंगे, हैं? शंकर को तो ज्ञान सागर थोड़े ही कहते हैं। शंकर पुरुषार्थी है या ज्ञान का सागर है? पुरुषार्थी है। तो शंकर नहीं कोई कथा सुनाएंगे, पार्वती के जन्म जन्मांतर की कथा भी नहीं सुनाएंगे, और अपनी जीवन कहानी भी नहीं सुनाएंगे। सो भी बाप कहते तुम सब पार्वतियां हो, तो पार्वती को सुनाएंगे? सृष्टि के आदि मध्यंत की कथा पार्वती को सुनाएंगे? जो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कथा सुनते सुनते क्या कर गई? तो सो गई। कथा सुनते सुनते अज्ञान की नींद में सो गई। तो पार्वती को सुनाएंगे? सृष्टि के आदि मध्य अंत की कथा किसको सुनाएंगे? अरे तुम सब सीताएं हो, तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब द्रौपदियां हो, इनको सुनाएंगे या किसको सुनाएंगे? अरे तुम सब सीताएं हो तो राम कौन है? राम एक है या अनेक हैं? राम एक है, तो किसको ज्ञान सृष्टि के आदि में अंत की कथा किसको सुनाएंगे? हैं? सीताओं को सुनाएंगे, तो सो जाती हैं। जो अज्ञान की नींद में बार बार सो जाती हैं, उनको सुनाएंगे? हैं? अरे यज्ञ के आदि में देख लो, ओम मंडली बनी, बनेगी नहीं। ब्राह्मणों की जो आदि में दुनिया बनी उसका रिजल्ट क्या हुआ है? वो अब्बल तो एम नंबर जो सीताएं हैं वो अज्ञान की नींद में सो गई या जागती रही है? बाप को पहचाना नहीं पहचाना? फिर दूसरी ब्राह्मणों की दुनिया रची गई, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, उसमें सीताओं ने बाप को पहचाना है? नहीं पहचाना। ब्रह्मा ने फिर दूसरी दुनिया भी बिगाड़ दी, घोषणा कर दी 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का, ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश, नई दुनिया कही स्थापना हो जाएगी। तो एडवांस पार्टी की ब्राह्मणों की दुनिया की स्थापना हो गई। फिर क्या हुआ है? अरे फिर क्या होता है, है? अरे अरे कुछ है, राजधानी वाजधानी स्थापन हुई। अरे 76 से लेकर अब तक कहीं राजधानी स्थापन हुई दिखाई पड़ती है? हुई। राजधानी का मतलब है राजा की धारणा शक्ति। माताएं कन्याएं या कुमार अधर कुमार, माताएं कन्याएं और उनमें जो अव्वल नंबर है वो स्थिर हो गई। अरे जो विश्व का मालिक बनेगा, नारायण बनेगा, जो सन 76 में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है उसकी राजधानी स्थिर हो गई नहीं हुई? तो बोला सीताओं को पार्वतियों को अमर कथा नहीं सुनाते हैं, अमर बनने की कथा, मृत्यु लोक से पार हो करके अमर लोक में जाने की कथा, सृष्टि के आदि मध्य अंत की कथा किसको सुनाते हैं? है? हम बच्चों को सुनाते? हम बच्चे तो सीताएं हो गए, पार्वतियां हो गए, और पार्वतियां सब सो जाती हैं, सीताएं सब धरणी में समा जाती है। धरणी माने देवान की धरणी। अरे किसको सुनाते हैं और सुनाने वाला कौन, आत्मा कौन? रमली आत्मा सुनाती है। शिव किसको सुनाते हैं? हाँ, पार्वतियों को नहीं सुनाते हैं। किसको सुनाते हैं? जो विश्व का मालिक बनता है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। तो तुम सभी अभी पार्वतियां हो, सभी सीताएं हो, पार्वतियां साथ सो जाती हो और सीताएं सब देह अभिमान की मिट्टी में समा जाती है। कहां की सुनाए? अच्छा आज गुरुवार है ना, ब्रह्मा बाबा को समझ में नहीं आता है तो टोली का दिन याद आ जाता है। आज गुरुवार है ना, पढ़ाई है क्या? क्या है ये पढ़ाई है? कौन सी पढ़ाई है? डॉक्टर बनने की है, इंजीनियर बनने की है? कौन सी पढ़ाई है? है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, और इस पढ़ाई का नाम है, क्या नाम है? राजयोग। कैसा योग? राज भरा हुआ है। जो गीता में भी लिखा है राजगुह्यम, राज विद्या, राजाओं की विद्या है। ये राजाओं की विद्या में क्या राज भरा हुआ है? भगवान आकर क्या राज सुनाते हैं? जैसे दुनिया में पढ़ाइयां होती है ना, बैरिस्ट्री की पढ़ाई, LLB पास करते हैं, पढ़ाई है ना, सर्जन बनने की पढ़ाई, ये सभी पढ़ाइयां है ना। तो ये भी पढ़ाई है जो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो तुम कभी आधीन नहीं बनेंगे। क्या? आधीन नहीं बनेंगे। राजा कभी आधीन होता है किसी के? है? राजा राज्य में किसी के आधीन होता है? नहीं होता। तो राजाई की पढ़ाई पढ़ाते हैं, लेकिन ये है फिर मनुष्य से देवता, बैगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई। क्या? बैगर, जो इस पुरुषार्थ की पढ़ाई में पढ़ाई पढ़ते हैं, वो तन मन धन समय संपर्क संबंध सारी शक्तियां कहां लगा देते हैं? है? ईश्वरीय सेवा में लगा देते हैं, और खुद क्या बन जाते हैं? खुद बेगर। बेगर के पास तो कुछ भी ना हो, तो ऐसे बेगर को फिर मैं बेगर टू प्रिंस बनाता हूं। वो गवर्नमेंट तो 5-year प्लान बार बार बनाती रहती है, और शिव बाबा एक ही बार प्लानिंग करते हैं। बाप आते हैं और बेगर टू प्रिंस बनाए देते हैं। 5-year प्लान है। क्या है? 5-year प्लान, 77 संपूर्णता वर्ष, उसके बाद 78 से गिनो, 78, 79, 80, 81, 82, 82 5 वर्ष पूरे होते हैं। और जिस फुल बैगर को फुल प्रिंस बनाते हैं, वो 5 वर्ष के बाद दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगने की दरकार उसको नहीं रहती। ये ज्ञान प्रैक्टिकल ज्ञान है। अभी यहां तुम क्यों आए हो? है? है? आए हो ना? अरे कोई लक्ष्य लेकर आए ना? अभी बैगर है ना? क्या अभी कोई राजधानी स्थापन हो गई? नहीं। तो राजधानी जब तक स्थापन नहीं हुई तब तक क्या है? बेगर है ना? भगवान के साथ पांडव थे, उनको अपना घरबार था है, घरबार नहीं था, बैगर बनकर घूमते थे है, घूमते थे बैगर पने के जीवन में सबसे लंबा जीवन कहां बिताया, कहीं बिताया कि नहीं है। कहते हैं द्रुपद की राजधानी कांपिल्य नगर में पांडवों ने लंबा टाइम बिताया, लेकिन तुम भारतवासी हो, तुम पांडव क्या हो, पांडे के बच्चे पांडव तो हो, जैसे ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, विष्णु के बच्चे वैष्णव, ऐसे ही तुम विष्णु जो भरपूर है, विष्णु क्या है, भरपूर, उसका दूसरा नाम भरत, उस विष्णु के बच्चे हो, भरत के बच्चे भारतवासी हो, क्या भारतवासी, कहां के वासी, भारत के वासी, अरे भारत के वासी माने भा माने ज्ञान रत्नों से भरपूर, ज्ञान रत्नों में जिसका जीवन रत है, रत माने लगा हुआ, ऐसा भारतवासी तुम बच्चे हो, क्या विदेशवासी नहीं, अमेरिका वासी नहीं, कहां के वासी, भारतवासी, भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जिस जो जीवन भर ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला है वहां के तुम वासी, माने तुम मन बुद्धि से कहां रहते हो, तुम्हारा घर कहां है, जो बाप कहते हैं घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो, बाप को याद करो, किसको याद करें, तीन तीन को याद करें, अरे कि एक को याद करें, तो तीन तीन क्यों कहा, वो एक जो है वो हमारा बाप भी है, उस बाप में बाप के पास हमारा घर भी है और स्वर्ग भी है, सुखधाम का दाता भी है और शांति धाम का भी दाता है, सारी दुनिया को खलास कर देगा, सारी दुनिया के विधर्मी धर्मियों विधर्मियों को दुश्मनों को, और तुमको क्या करेगा, तुमको राजाई मिल जाए, तो नई दुनिया स्वर्ग की राजाई तुमको मिलेगी, तो तुम कहां के वासी हो गए, स्वर्गवासी हो गए, तो भारत अभी क्या है, जिसका नाम काम के आधार पर भारत है, ज्ञान की रोशनी में रत माने लगा हुआ है, वो अभी क्या है, है बेगर है, क्या तुम्हारे पास लाख करोड़ रुपए हैं, है? बताओ, एडवांस ज्ञान में कोई करोड़पति आए हैं, आते हैं, पर 10 करोड़ कोई कोई बिरलों के पास है, कितने, 10 करोड़ कोई कोई बिरले हैं जिनके पास 10 करोड़ भी, मन है, सच्ची को त्रेता की आबादी कितनी होगी है, 10 करोड़। तो वो 10 करोड़ के ऊपर मालकाना किसका होगा है, जो 10 करोड़ जीवन मुक्ति पाएंगे, जीवन में रहेंगे और दुख दर्दों से मुक्त भी रहेंगे, उनके ऊपर वर्तमान संगम युग में कौन मालिक बनता है, है? नारायण, संगम युग का। तो कोई कोई बिरलों के पास 10 करोड़ भी, परंतु अभी देखो क्या बनते हो, विश्व के मालिक बनते हो। क्या 500-700 करोड़ के दिल में सिक्का जमावेंगे या 10 करोड़ के दिल में बसेंगे जब महाविनाश होगा, 10 करोड़ के दिल में है, हाँ 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं उस बाप को पहचानेंगी जो मनुष्य सृष्टि का बाप है और जो शिव बाप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनता है, जिसकी यादगार शिवलिंग है, जिसके लिए शिव बाप बोलते हैं मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ। तो शिवलिंग जो पूज्य है वो किसकी यादगार है, साकार की यादगार है, जिस साकार ने पुरुषार्थ करके अपन को किस स्टेज में पहुंचाया है, बाप समान स्टेज में पहुंचाया, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज में पहुंचाया। ओम शांति।